राम राम ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा जया कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जया कृष्णा बलराम जय गौरानिताये गौरनिताये जय गौरनिता जया राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जया प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा श्रीला प्रभु पदा जया प्रभु हरि बो हरि बो हरि बो नित्य गौर हरि बो श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौर नित्य की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता शाखा देवी की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय संवेद वैष्णव भक्तवृंद की जय नेताय गौर देवनंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायसु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पठन स्कंद चार अध्याय बाईस श्लोक संख्या पांच आप सभी दोहराएंगे हमारे साथ में यत पाद सोच सलिलई, यत पाद सोच सलिलई, मार्जिता लक बंधन, मार्जिता लक बंधन, तत्र शीलवतां दत्तां, तत्र शीलवतां दत्तं, आचरन् मानयन्निव, आचरन् मानयन्निव, यदपादशोचसलिलै, यतपादशोचसलिलै, मार्जितालकबन्धनः, मार्जितालकबन्धनः, तत्र श्रीलवतां व्रतं, तत्र श्रीशीलवतां व्रतम्, आचरन् मानयन्निव, आचरन् मानयन्निव। आप लोग दोहराएंगे, यत पाद सोच सलिलै, माताएं यद पाद सोच सलिलै, मार्जिता लकबन्धन, तत्र श्रीलवतां व्रतम्, यद पाद सोच सलिलै, मार्जिता सत्तार। बोलो सत्तार्थ, सत्पाद उनके चरण कमल, सोच धुला सलिलै जल से मार्जित छिड़का गया अलक बाल बंधन जुड़ा या राशि, बालों बालों का जो बंधन है या बालों का जो समूह है, तत्र वहां शील व्रताम सम्मानित पुरुषों के व्रतम आचरण, आचरण आचरण करते हुए मानयन अभ्यास करते हुए ईव सद्रत अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी का प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। ऐसा शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। आप लोग दोहराएंगे, तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। ऐसा शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्म दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान होना चाहिए। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आपनी आचरी प्रभु जीवेर सिखा। यह सर्व विदित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य के रूप में जो शिक्षा दी उसे वे अपने जीवन में उतारते थे। यद्यपि अनेक महापुरुषों ने उन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पहचान लिया था, किंतु जब वे भक्त के रूप में उन्हें उपदेश देते थे वे कभी भी अवतारी कहलाना पसंद नहीं करते थे। भले ही कोई कृष्ण का अवतार था, भले ही कोई कृष्ण का अवतार या भगवान का सत्यावेश अवतार हो, किंतु उसे उसको विज्ञापित करना नहीं चाहिए कि वह अवतार है। लोग स्वयं ही कालक्रम में सच्चाई जान लेंगे, हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय के अनुसार वो प्रकट हो ही जाता है। तो लोग समय के अनुसार सच्चाई जान लेंगे। प्रभु महाराज आदर्श वैष्णव राजा थे, अतः वे अपने निजी आचरण से दूसरों को सिखाना चाहते थे कि कुमारों के सम्मान कुमारों के समान महापुरुषों का किस प्रकार स्वागत सत्कार करना चाहिए। यही वैदिक प्रथा है। जब कोई साधु पुरुष किसी के घर आए तो वह चरण पखार कर चरणों तक को अपने तथा परिवार के व्यक्तियों के सिर के ऊपर छिड़के। प्रभु महाराज ने ऐसा किया क्योंकि वे जनता के आदर्श शिक्षक थे। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना सलाखयान चक्षुपुनमे वितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रज भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अचप्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम सर्वति पाचालम पंगुलंग यते गिरिम यत्र पातम हम वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीन तारणम श्री चैतन्य ईश्वरम यम प्रवजन्तम अनुपेतोपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तर आजहाव पुत्री तन्मतया सर्वो अग्नेतु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानत्वस्मि तम सर्वभूत हृदय मुनिमानत्वस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः भूतैर्महद्भि पुरा इमं विभो निर्माय चेते यदमूसपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकम् सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे हरे कृष्ण इसकी आवाज थोड़ा कम है बहुत ज्यादा कम हरी बोल सुनाई दे रहा है ना सबको तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है चारों कुमारों से प्रथु महाराज की भेंट तो किस प्रकार आप सभी कथा को इस प्रसंग को जो पूर्व में वर्णित हो चुका है महाराज प्रथु ने यज्ञ संपन्न किया 99 यज्ञ जो है संपन्न कर लिया था सोमा यज्ञ का संकल्प लिए थे तो उसी समय इंद्र ने आकर के और उस यज्ञ में विघ्न डाला जो यज्ञ का घोड़ा था उसको चोरी किया तब ब्रह्मा जी आकर के और इंद्र को समझाए तो देखो तुम्हें 100, 99 और 101 यज्ञ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है 100 यज्ञ है तो भी कोई फर्क नहीं 99 रहेगी तो भी कोई फर्क नहीं और एक एक्स्ट्रा कर लोगे तो भी आपके लिए कोई फर्क नहीं है आपकी पोजीशन पर आपकी स्थिति में कोई भी अंतर आने वाला नहीं इंद्र उत्पात कर रहा है इंद्र जो है पाखंड का प्रचलन कर रहा है क्योंकि इंद्र जैसा कार्य करेगा आगे चल करके प्रजा फिर उस चीज को ग्रहण करेगी तो ये ठीक नहीं तो इसलिए 99 यज्ञ पर ही प्रतु महाराज का यज्ञ बंद कर दिया गया इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए उसी समय जो है भगवान इंद्र के यज्ञ में आकर के उपस्थित हो जाते हैं थोड़ा सा बोल बोल देंगे थोड़ा सा तो भगवान इंद्र के यज्ञ में उपस्थित होते हैं वो भी बहुत प्रसन्न थे बहुत आशीर्वाद दिया इसको आप लोग पिछले श्लोकों में सुन चुके हैं अब भगवान वहां से गए हैं उसी समय चार कुमार वहां पर उपस्थित होते हैं जैसे ही चारों कुमारों ने जो देखने में तो 5 वर्ष के बच्चे लगते हैं लेकिन वो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं यहां तक ब्रह्मा जी के सॉरी शिव जी के भी पूर्वज हैं वो लेकिन देखने में 5 वर्ष के बच्चे लगते हैं तो प्रभु महाराज के यज्ञ स्थल में उनका प्रवेश होता है जैसे ही प्रभु महाराज के यज्ञ में चार कुमारों ने प्रवेश किया तो प्रभु महाराज हालांकि भगवान के उत्कृष्ट कोटि भक्तों में उनकी गिनती आती है दो विशेषण उनके दिए गए हैं पहला विशेषण है क्षत्रियों में श्रेष्ठ है। यदि क्षत्रियों में श्रेष्ठ नहीं होते तो जिनके पराक्रम से इंद्र भी भयभीत नहीं होता। लेकिन इंद्र भी जिनके पराक्रम से भयभीत है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े क्षत्रिय हो सकते हैं। और वैष्णवोत्तम, वैष्णव में भी क्या है, वो सबसे अग्रगण्य है। यदि वो वैष्णवोत्तम नहीं होते तो चारों कुमार कभी भी उनके प्रति आकर्षित नहीं होते। प्रभु महाराज वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य है, उत्तम है, इसलिए उत्तम के पास में उत्तम ही आता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, पिछले तात्पर्य में, संसार के अंदर प्राय देखा जाता है मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी वृत्ति के अनुसार उस स्वभाव के व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होता है। जैसे शराबी है तो शराबी व्यक्ति के प्रति वो आकर्षित होगा, उसको मालूम है कि इससे कभी भविष्य में मिलेगा, हमें पैक मिलेगा। ज्वारी ज्वारी के प्रति आकर्षित होता है। इसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी भक्तों के प्रति आकर्षित होते हैं। आप सभी कथा सुनोगे मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय ऋषि भगवान के अनंत कोटि के भक्त थे, जिनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी। तो इंद्र जो है अपनी स्वर्ग की अप्सराओं के द्वारा, काम के द्वारा, और भी जो है उसके पास में जो शक्ति थी जीवात्मा को आकर्षित करने के लिए, संसार में फंसाने के लिए, उसने पूरी शक्ति उसने लगाई। लेकिन मार्कंडेय को आकर्षित करना तो बहुत दूर रहा, जो तक भी उनके मतलब उसके ऊपर जो है उसके इतने बड़े आयोजन से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए भगवान शिव जी जब जा रहे थे पार्वती के साथ में तो तुरंत उनकी इच्छा हुई कि चलो इनसे मिलकर के चलते, क्योंकि ये अनन्य भक्त हैं भगवान के। तो शिव जी जो है आए और आकर के फिर मार्कंडेय ऋषि से मिले और उनको आशीर्वाद भी दिए थे थोड़े से। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो है चतुष्पन जो भगवान के उत्कृष्ट भक्त हैं, बचपन से ही जन्म से जन्म लेते ही, जैसे सुखदेव जी जन्म लेते ही भगवान के भक्ति में लग गए थे, ऐसे भी जन्म से भगवान की भक्ति में थे। क्योंकि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का प्रारंभ कर रहे थे शुरू शुरू में, तो जो भी बच्चा पैदा करते पहला एक ही उनके लिए पिता का आदेश था, जाओ तुम शादी करो, बच्चे पैदा करो। तो जब इनको ये आदेश दिया गया था तो प्राय तो सभी उसको स्वीकार करते रहे, लेकिन इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं जी, पिताजी ये काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, हम तो भगवान के भजन के लिए आए, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने उत्कृष्ट भक्त हैं, बचपन से ही उनकी मति भगवान में लगी हुई। तो हालांकि प्रभु महाराज इनका लेवल भी चतुष्पन से कोई कम नहीं है, क्योंकि वैष्णव है, हालांकि क्षत्रिय है लेकिन फिर भी वैष्णवों में श्रेष्ठ है, भगवान के अवतार है, सत्यावेत अवतार है, फिर भी संसार के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि एक सम्मानीय व्यक्ति का, एक साधु पुरुष का, एक ब्राह्मण का, एक योग्य व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, इसके द्वारा, इस श्लोक के द्वारा हमें जो है इन श्लोकों में विशेष करके हमें ये जानकारी मिल रही है। तो हमारे लिए इस श्लोक में शिक्षा यही है कि हमें भी कोई साधु आता है, कोई महात्मा आता है, कोई भगवत भक्त आता है और कोई सम्मानी व्यक्ति आता है तो उसका उसी प्रकार जो है सम्मान करना चाहिए, जिस सम्मान के वो योग्य है उसी लेवल का उनका जो सम्मान होना चाहिए। आज जैसे आज के श्लोक में जिस प्रकार बताया जा रहा है कैसे सम्मान करें, तो पदपाद सोच सलिलई मार्जिता लक बंधन, पदपात सोच सलिलई, पदपात सोच सलिलई, जैसे ही कुमारों ने प्रवेश किया तुरंत प्रभु महाराज ने उनको देखा, देख करके पहले तो उठ करके उनका सम्मान किया। इतना तेजी से सम्मान किया तो पिछले श्लोकों में हम सुन चुके हैं कि जैसे इंद्रियां अपने विषयों की तरफ तुरंत दौड़ जाती हैं, उसी प्रकार उन्होंने जैसे ही उनको देखा चतुष कुमार को, तुरंत उठ करके इमीडिएटली उठ करके उनका सम्मान किया, उनको प्रणाम किया और उच्च आसन प्रदान किया। इसके बाद में उन्होंने नतमस्तक उनके चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद में फिर क्या कर रहे हैं तो आज के श्लोकों से मालूम चल रहा है। तो तदपाद सोच सलिलई, उन्होंने क्या किया, सलिलई जल के द्वारा उनके चरणों को धोया। ये प्रथा, ये वैदिक प्रथा है, साधुओं के चरणों को धोना चाहिए। उत्तरी भारत में तो कम प्रचलन है ये सारा चीज, अपना पश्चिमी भारत में भी कम है, लेकिन उड़ीसा शायद है, बंगाल में ये प्रचलन ज्यादा। साधु का सम्मान तो करते हैं लेकिन पैर धोना है, बहुत बिरले ही धोते हैं, सभी नहीं धोते, ये प्रचलन कम है, लेकिन होना चाहिए। इसलिए यूपी में भगवान को ज्यादा बार बार आने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लोग परफेक्ट नियम तोड़ने में, लेकिन साधु का पैर धोना चाहिए। भगवान का जो देखो, हालांकि प्रभु महाराज एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, तो भक्त का जो गुण होता है जैसे भगवान का गुण होता है, सेम उन्हीं गुणों को भक्त भी धारण करते हैं। एक श्लोक में हम देखेंगे, इसकी चर्चा करने से पहले, जब नारद मुनि भगवान जिस समय द्वारका में थे और नारद की इच्छा हुई कि प्रभु किस प्रकार 16,108 घरों में रह रहे हैं अपनी अलग अलग पत्नियों के साथ में, किस प्रकार अपनी दिनचर्या को करते हैं, ये सारा चीज देखने के लिए उन्होंने द्वारका में प्रवेश किया। तो जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया तो सामने जो है एक भवन दिखाई दिया, और वो भवन और किसी का नहीं था, रुक्मिणी जी का भवन था। तो जैसे ही नारद जी उस भवन में प्रवेश करते हैं जहां भगवान पलंग पर बैठे हुए थे और रुक्मिणी जी जो है पंखा झड़ रही थी, तो इमीडिएटली जैसे ही नारद जी ने प्रवेश किया, फर्श ने भगवान जो खड़े होकर के और उनको झुक करके प्रणाम किया, आसन दिया और क्या किया, सेम जैसे आज की जो प्रभु महाराज कर रहे हैं एज इट इज सेम भगवान ने किया, जैसे श्लोक के द्वारा हम देख सकते हैं। तस्वनज का चरण तदपा स्वमूर्धना विभ्रत जगत गुरोत्तम अपि सतां पति ब्रह्मण्य देव यति यद नाम गुणयुक्त तस्यैव यत चरण सोचम अशेष तीर्थ तस्या अवनिज्य चरणो तद अपः स्वमूर्धना। नारद जी ने जैसे ही भगवान के कक्ष में प्रवेश किया, तस्य अवनिज चरणो तद अपः, भगवान ने क्या किया, तुरंत जो है नारद जी के चरण कमलों को जल से धोया और स्वमूर्धना विभ्रत, और उस जल को नाली में नहीं फेंक दिया। बहुत सोचने वाली बात है, कभी कभी देख ही देखा धो भी देते हैं लेकिन चुपचाप रखते हैं साइड में, फिर पीछे नाली फेंक देते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत ये जो जल है ये साधारण जल नहीं है, ये जिसको बोल सकते हैं इसके अंदर उसकी सारी तपस्या है, इस जल के अंदर ये बहुत पवित्र होता है, इसके जो है इस जल के अंदर मतलब कई गुना जो है क्षमता होती है पापों को नष्ट करने के लिए। इसलिए कभी भी गलती नहीं करना चाहिए कि साधुओं के चरणों का जल, पैर धोने से जो जल होता है उसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, ये बहुत पवित्र होता है। भगवान स्वयं इसकी शिक्षा दे रहे हैं, इसके भगवान ने क्या किया, उसको धोया स्वमूर्धना विभ्रत, और उस जल को कहां धारण किया, अपने सर पर धारण किया, जैसे वहां देख रहे हैं। इसके बाद में बता रहे हैं जगत गुरोत्तम अपि,
हालांकि ओ प्रभु जगत गुरोत्तम भी जितने भी गुरु हैं संसार के अंदर वो सारे ब्रह्मांडों के भी गुरु हैं। जिनके गुरु जो हैं उन गुरुओं के भी भगवान जो गुरोत्तम है वो सबके गुरु हैं। अभी सताम पति और जो भगवान के उत्कृष्ट कोटि के भक्त हैं उनके रक्षक हैं, फिर भी भगवान अपने आचरण के द्वारा इस जगत को शिक्षा देने के लिए ये सारा कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मांड देव इति यद नाम गुण युक्तम, इस बात को भगवान सत्य सिद्ध करना चाहते हैं कि ब्रह्मांड देव उनकी जो स्तुतियां हैं उनके जो प्रार्थना है वो ब्रह्मांड देव के नाम से की जाती है। नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मांड हिताय, इस नाम को सिद्ध करने के लिए भगवान के अंदर गुण है कि नहीं है, इस गुण को जो है सिद्ध करने के लिए भगवान ये सारे संसार को दिखा रहे हैं। इस प्रकार जो है चरण प्रक्षालन करके पश्चैव यत चरण सोचम अशेष तीर्थ, हालांकि तत चरण सोचम उनका जो चरण धोवन है, भगवान का चरण धोवन है जो गंगा बन करके तीनों लोकों को पावन कर रहा है पहले से ही, जो दूसरे के चरणों को धो रहे हैं, लेकिन उनका चरण धोवन पहले से ही अनादि काल से क्या कर रहा है, तीनों लोकों को पावन कर रहा है, स्वर्ग लोक को भी पावन कर रहा है, मृत्यु लोक को भी पावन कर रहा है और जो है पाताल लोक को जो है निम्न लोकों को भी पावन कर रहा है। शिव जी ने जब गंगा जी जब नीचे उतर रही थी तो उन्होंने शर्त रखी थी कि मेरे बेग को कौन रोकेगा, तो जो है तो क्या नाम है भागीरथ थे, उन्होंने कहा कि जो है हम शिव जी से प्रार्थना करें, जैसे ही शिव जी ने प्रार्थना किया कि आप गंगा जी को अपने चरणों पर रखो तुरंत राजी हो, क्यों राजी हो गए, क्यों उनको मालूम था ये चरण क्या है, ये चरण जल आ रहा है, कोई साधारण जल नहीं है, भगवान का चरण अमृत है, इसलिए इस खुशी से जो है उन्होंने बड़ी आसानी से उसको अपने साथ धारण कर लिया। ध्रुव जी महाराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब ध्रुव लोक में गंगा जी उतरी, क्या नाम है आपके ब्रह्म लोक से ध्रुव लोक में जब आई, ध्रुव जी भी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने यही समझा कि मेरी तपस्या का फल ये ही है जो है पूरा जो है गंगा जी मेरे घर के पास पास में जो चरणामृत है जिसमें जिस प्रति स्नान करते पान करते, तो ओ प्रभु जो है संसार के सामने सिद्ध करना चाहते हैं कि चरणों तक यत चरण सोचम, उनका जो चरण सोच है उनका जो चरण धोवन है अशेष तीर्थ गंगा के रूप में है और अशेष तीर्थ सारे तीर्थ आकर के इसमें मिलते हैं, वो ही चीज है उनके भक्त भी जो है, क्योंकि भगवान जैसा स्वभाव होता है भगवान के भक्तों का भी उससे बड़ा स्वभाव होता है, ऐसा ही स्वभाव होता है, इसलिए यहाँ पर भी जो है तत्पाद सोच सलिल प्रभु महाराज ने चतुष्सन के चरणों को धोया और मार्जित अलक बंधना, मार्जित मतलब होता है छिड़कना छिड़का, कहाँ छिड़का अलक बंधन है अपने सिर पर चढ़ा, जहाँ जिनके अलका है मतलब जिनका बाल थे बालों के ऊपर उन्होंने उसको क्या किया उसको छिड़का। तत्शील बताम वृत्ति, हालांकि वो वैदिक विधि विधानों के जो वेदों के अंदर जो निर्देश दिए गए हैं एक साधारण गृहस्थ को कैसा होना चाहिए, हालांकि प्रभु महाराज इन विधानों से ऊपर थे, उनकी वेद की मर्यादा कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी शील बताम वृत्ति, फिर भी उन्होंने जो शीलवत है जो श्रेष्ठ व्यक्ति है जो पुण्य व्यक्ति है जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनकी वृत्ति को उन्होंने स्वीकार किया। आचरण मानयन इवह, किस प्रकार आचरण मानयन जो मानयन है जो माननीय है जो सम्माननीय है उनको सम्मान दे करके चतुष्सन को सम्मान दे करके इस प्रकार उन्होंने शील बताम वृत्ति आचरण, जो पुण्य आत्मा है जो शीलवत है जो श्रेष्ठ पुरुष है उनकी वृत्ति को उन्होंने ये जो संसार को उसका पालन करके और लोगों को दृष्टा। भगवत गीता में कहा गया है यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत देव इतरो जन स यत प्रमाणम कुरते लोकोस्तत अनुवर्तते। भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन यत यत आचरति श्रेष्ठ श्रेष्ठ यत यत आचरयति। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में या देश में कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिष्ठित होते हैं, जिनका समाज में और देश में क्या दिया जाता है? सम्मान उनको दिया जाता है। तो पहले तो ये श्रेष्ठ व्यक्ति हुए। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तो समाज में जो प्रतिष्ठित है या देश में जो प्रतिष्ठित है, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाते हैं, समाज के अनुसार और देश के अनुसार। लेकिन चूंकि इनके अंदर श्रेष्ठता तो है, लेकिन ऐसी श्रेष्ठता भी ठीक नहीं है जैसे आजकल के श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। आजकल के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो जनता को अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति की सुविधा दें, उनकी दृष्टि में वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये वास्तव में श्रेष्ठता नहीं है, ये बात समझ में आ रही है। श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ दूसरा व्यक्ति है, हालांकि वो श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से उनको हम श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। डेमोक्रेसी बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने किया है। डेमो से डीमन, क्रेसी कृषि का मतलब होता है असुर। आजकल की जो प्रजातंत्र है या आजतंत्र के जो प्रजातंत्र के जो नेता हैं, वो कैसे हैं? पहला उनका विशेषण है असुरी स्वभाव के होंगे, और दूसरा उनका विशेषण है क्रेजी होंगे, पागल होंगे। तो ये जो है श्रेष्ठ तत्व, मतलब यत यत आचरति श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता क्या है? तो शास्त्रों का उसको ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों के ऊपर उसको चलना चाहिए। पहला जो है उसके अंदर विशेषण होना चाहिए, दूसरा उसे कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, उसे भगवत भक्त होना चाहिए। तो यत यत आचरति श्रेष्ठ, ये जो है श्रेष्ठ व्यक्ति कहना, शास्त्रों के नियमों का पालन करना, और इसके साथ साथ में उसको क्या होना चाहिए? भगवत भक्त होना चाहिए। एक इस प्रकार का जो है सिद्धांत होना, श्रेष्ठता को सिद्ध करते। यदि ये गुण उनके अंदर नहीं है, अभी जैसे अभी क्या नाम है, हमारे कुछ लोग आए थे वहां से, क्या नाम है, हरिद्वार के पास में है, पहले ही है, एक गांव एक शहर है, शहर पड़ता है, रोटी से भी नहीं हो रही दूसरा उनका नाम जो भी है, वहां से अभी कुछ दिन पहले आए थे, तो बता रहा था उनका एक ट्रक था, उसका बेचारे का व्यवसाय चलता था उस ट्रक से, लेकिन वो चोरी हो गया, वो मालूम भी पड़ गया, वो किसी नेता ने लिया था, ठीक है ना, लेकिन मालूम करके भी, सबको जानकारी हो करके भी बेचारा कुछ नहीं कर सका, और उसका जो ट्रक क्या किया, उसको कटवा करके और उसको वितरण कर बिक गया, और उसके पैसा उन्होंने रख दिए और उसको बोल दिया तुम्हें जो करना है कर लो। तो हालांकि वो भी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज में, लेकिन ये डेमोक्रेसी एक इस प्रकार का ऐसा नहीं हुआ आज तक का, ये समाज में इस प्रकार का नहीं। लेकिन जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनका विशेष गुण दया भी होता है। भगवत भक्त का विशेष गुण होगा, पहला गुण है जीवे दया। वो जीवे दया का मतलब क्या है? जीवे दया का मतलब है अपना जो दुख है या जीव का दुख है उसको अपना दुख करके समझना और जीवों के सुख को अपना सुख करके मानना, ये जो है भगवत भक्तों का पहला गुण होता है। तो जो कि प्रभु महाराज जो है हम जो है उसमें ज्यादा वो नहीं जाते, तो बोलते हैं कि यत यत आचक्ति श्रेष्ठ। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, हालांकि ऐसे लोग कभी कभी वेदों की मर्यादाओं से भी ऊपर होते हैं, उनके लिए वेदों की मर्यादा का पालन करने की जरूरत नहीं है, जैसे प्रभु महाराज के लिए कोई वेद मर्यादा का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समाज को जो है एक दृष्टांत देने के लिए, समाज को जो है इस बताने के लिए भविष्य में समाज, क्योंकि आगे चल करके समाज उसका पालन करने वाला है, इसलिए फिर भी वो क्या करते हैं, उन्हीं वैदिक मर्यादाओं में अपने को सीमित करके और उन्हीं के अनुसार वो चलते हैं। उदाहरण स्वरूप भगवान ने गीता में कहा है, न माम पार्थस्य कर्माणु, क्या है, न मैं पार्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु अकिंचन, पार्थ न मैं कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, किंचन का मतलब थोड़ा भी, तीनों लोकों में मेरे को कोई भी ऐसा नहीं है स्थान या कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे को करना है, मैं समस्त कार्यों के जो वेदों की जो जिनमें बताया गया है सारे कार्यों से मैं ऊपर हूँ, कोई भी मेरे लिए बंधन नहीं है किसी भी कार्य करने के लिए, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं क्या करता हूँ, व्रत एवच कर्मणि, व्रत एवच कर्मणि, उन कार्यों में एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक श्रेष्ठ व्यक्ति की तरह फिर भी मैं क्या करता हूँ, अपने को मैं उन कार्यों में मैं लगा करके रखता हूँ। जैसे भगवान श्री राम का उदाहरण देते हैं, या चलो पहले हम भक्त का उदाहरण देते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज भक्त थे, स्वयं धर्मराज भगवान जिनके 24 घंटे साथ में रहते हैं, जिनका जो ऐश्वर्य कितना है, जिनका ऐश्वर्य इतना समृद्ध है कि इंद्र भी उनके ऐश्वर्यों के लिए लालायित रहता है, इंद्र का ऐश्वर्य भी महाराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य के सामने कुछ भी नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे थे, पृथ्वी अपने आप उनको जो है अन्न उत्पादन करती थी, बिना बोए है और बिना कुछ उसमें कुछ डाले, अन्न डाले, आजकल इतना सारा जोत देते हैं, इतना सारा अन्न डालते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, फिर भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि जितना कर रहे हैं उतना भी नहीं मिल रहा। लेकिन प्रभु महाराज के साम्राज्य में यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, पृथ्वी अपने आप जैसा चाहिए वैसा अन्न उत्पादन करेगी, पेड़ हर समय फल फूलों से क्या कह रहते थे भरे रहते थे, ऐसा नहीं था कि जो है ऋतु के अनुसार वो फल देते थे, ऋतु के अनुसार तो थे ही था, लेकिन बिना ऋतु के भी वो फल प्रदान करते थे, हर समय प्रत्येक 12 महीनों में हर वृक्ष फल फूलों से लदा रहता था, नदियां है समुद्र अपने आप रत्न लाला करके छोड़ करके जाते थे, यहां तक नदियों का पानी रस बन गया था, युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य रस रसीला हो गया था, एक गन्ने का रस और कोई जूस जो आप सोच सकते हैं, ऐसे रस नदियों में बह रहा था, आप कल्पना कर सकते हैं, या पानी का पीने भी जो है मुश्किल हो रहा है, ये सारी चीजें एक कोई ऐसी नहीं है कलोल कल्पनाएं नहीं है, बिल्कुल प्रत्यक्ष भगवत भक्तों के साम्राज्य में ऐसा ही साम्राज्य, पहाड़ जो है नाना प्रकार के खनिज उनको अपने आप देते थे, कोई उनमें बम लगा करके विस्फोट करने की जरूरत नहीं, अपने आप पहुंच जाते थे लोग, आज तुम्हारी दक्षिण फिर भी ओ भगवान के प्रति कितना प्रेम था कि जैसे ही और मतलब उनके और भी बहुत सारी चीज, मतलब न्याय कितना था उनके राज्य में, हर मतलब उसको न्याय दिया जाता था, मनुष्य को जैसे न्याय मिलता था, पशु को भी मिलता था, पक्षियों को भी मिलता था, यहाँ तक उनके राज्य में यदि कोई पशु से या किसी वृक्ष से कष्ट नहीं हो रहा है तो उस वृक्ष को या उस पशु को कोई मार नहीं सकता है, वृक्ष को काट नहीं सकता, जैसे आजकल काट काट करके पूरा जो है ढेर कर देते हैं। कल्पना करो कितना सुंदर व्यवस्था थी। लेकिन वही युधिष्ठिर महाराज जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने लोक को प्रस्थान कर गए हैं, केवल इतना ही सुनना था। जैसे ही उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण अब इस धराधाम पर नहीं है, अपने धाम को प्रस्थान कर चुके हैं, इमीडिएटली उन्होंने पूरे साम्राज्य का जिसके लिए इंद्र जैसे लालायित रहते हैं, एक सेकंड में छोड़ दिया। कल्पना करो ये सारा हमें मतलब किस प्रकार होना चाहिए। हमारे घर में तो इतना कुछ है नहीं, वैभव नहीं है कि नहीं, फिर भी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखो भगवत भक्तों के ये सिद्धांत, ये दृष्टांत उनके लिए नहीं है, ये सारे हमारे लिए, हमें इनसे शिक्षा लेना है। इतना सारा ऐश्वर्य भी उनको जो है कोई सुख नहीं दे सका, एक सेकंड के उन्होंने प्रत्याग कर दिया और अपने को बिल्कुल पागल की तरह जड़वत मूक बधिर सारे शिखरे पहन लिए, बालों को बिखेर लिए और सीधे प्रस्थान कर गए जो हिमालय की तरफ। शिक्षा ये हमारे लिए यत आचरती श्रेष्ठ, इन शिक्षाओं को ग्रहण करना। भगवान श्री राम देख सकते, भगवान श्री राम ने यज्ञ किया, अब यज्ञ हो गया तो दक्षिणा क्या देना है, तो भगवान श्री राम ने कहा पूरा अयोध्या की पृथ्वी, पूरा अयोध्या ही में आपके ब्राह्मणों को हवाले कर दिया, केवल अपने पास में जो कुछ बचा था वो रखा, बाकी उनके पास एक पैर रखने के लिए भी जमीन नहीं रखी, सारी की सारी ब्राह्मणों को दान कर दिया। कल्पना करो हम तो कई हिस्सा करेंगे दान देने से पहले, कितने हिस्सा करेंगे लड़के के लिए, लड़की के लिए, जो है भतीजे के लिए, उसके लिए सब कुछ बचेगा तो ठीक है, नहीं तो वो भी बाद में देख लेंगे। आप सोच सकते हैं इस प्रकार। और पिता के कहने से हालांकि उनको जरूरी नहीं था वनगमन के लिए, लेकिन एक अपने पिता की मर्यादा को रखने के लिए, अपने पिता के वचनों को रखने के लिए 14 वर्ष का उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया था। हालांकि पिताजी राजी नहीं थे, लेकिन अपनी सौतेली माता को संतुष्ट करने के लिए और उनको नहीं सारे संसार को यह शिक्षा देने के लिए, यदि अपना स्वजन हो, अपना माँ है या पिता है, यदि कोई इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो पुत्र का प्रथम कर्तव्य बनता है कि उस प्रकार उस समस्या को हल करे। जैसे गरुड़ जी ने जो पक्षियों की माता थी वनिता और सर्पों की माता थी कद्रु, जब कद्रु ने एक बार छल से वनिता को बंदी वो कर लिया था, अपनी दासी बना लिया था, तो जब गरुड़ जी को मालूम पड़ा तो उनको वह सहन नहीं हुआ और तुरंत उन्होंने कहा कद्रु के पास में जाकर के आप कैसे मेरी माता को मुक्त करो। तो कद्रु ने कहा जो सर्पों की माता थी, उन्होंने कहा आप मेरे को अमृत ला दो, अमृत का कलश ला करके दे दो, मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगा। गरुण जी जो है स्वर्ग लोक में गए, हालांकि अमृत की सुविधा के लिए इतनी कठोर व्यवस्था करके रखे हैं, इतनी कठोर व्यवस्था है, मनुष्य की तो चलती का है, हवा का भी वहां प्रवेश नहीं है, लेकिन गरुण जी इन सारी समस्याओं को फेस करते हुए वहां गए, युद्ध किए, परास्त किए और जो है उससे जल ला करके अमृत ला करके कद्रु को दिया और अपनी माता को मुक्त किया। हालांकि उन्होंने पीने नहीं दिया, वो जानते थे कि सर्पों को अमृत पिलाना भी विष बनेगा, तो अमृत नहीं रहेगा विष बन जाएगा, तो उन्होंने स्वीकार किया। और आप सोच सकते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने केवल एक कुछ जो कुछ लोग थे जब वो अपनी प्रजा में घूम रहे थे, देख रहे थे मेरी प्रजा का कैसा शासन चल रहा है, कुछ लोगों को बस मतलब एक कुछ धोबी जैसे जिसकी कहते हैं धोबी की कोई वैल्यू है क्या, उसके कहने पर भी माता सीता को उन्होंने पकड़ा। तो सिद्धांत सिद्धांत है कि देखो कैसे कैसे उन्होंने समाज में आचरण नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण जो कृष्ण बंदे जगत गुरु जो गुरुओं के भी गुरु हैं, वो भी एक जो है गुरु स्वीकार कर रहे हैं, संदीपनी से जो है शिक्षा ले रहे हैं। हालांकि संदीपनी के अंदर जो बुद्धि है वो उनसे ही आ रही है, लेकिन उनके यहाँ जो है एक बच्चे की तरह शिष्य की तरह जा करके और जैसे एक साधन मतलब स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करता है, ऐसे शिक्षा ग्रहण भगवान सिखा रहे कि नहीं, गुरु बनाना ही चाहिए, गुरु से शिक्षा लेना ही चाहिए। धर्म की मर्यादा के लिए भगवान ने जो धर्म की धर्म संस्थापन अर्था है इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने स्त्री अवध्य है सबसे पहले पूतना का वध किया। कभी भी भाई का जो है वध नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका भी जो है क्या नाम शिशुपाल दंतदत्त का वध किया। मामा का वध नहीं करना चाहिए, उनका भी वध किया है कि नहीं। अपने परिवार का वध नहीं किया, अंत में जो यदवंश को पूरा जो श्राप दे करके सबको धराशायी कर दिया। केवल समाज को शिक्षा देनी, जहाँ धर्म की व्यवस्था, जहाँ अपना स्वजन अपना स्वार्थ नहीं देखना है, समाज का हित क्या होगा। शिक्षा का मतलब मेरा मतलब हित हो रहा है या मेरे परिवार का हित हो रहा है, नहीं, अपना अपने परिवार का हित नहीं, समाज का कल्याण, परम कल्याण, कल्याण और परम, प्रिय और श्रेय। प्रिय नहीं, प्रिय का मतलब होता है इंद्रिय शरीर से संबंधित जो सुख है, और श्रेय का मतलब आत्मा का जो सुख है भगवान का भक्ति। अपने हित को कैसे हम लगा सकते हैं, ये सारा चीज देखना। तो प्रभुपाद जी ने जो है तात्पर्य में दिया है, आपने आचरी प्रभु जीवे रे सिखा। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन चूंकि वो एक भक्त का रोल कर रहे हैं, तो कभी भी उन्होंने अपने को भगवान स्वीकार नहीं किया। कोई उनको भगवान भी बोलता था तो कान में उंगली देते थे और श्री विष्णु 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 करते थे। हालांकि उन्होंने कहा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौर, आप कृष्ण है, पहले जो है काले थे, आप गौर वर्ण में आए हैं, लेकिन हमने तो आपको पहचान लिया। लेकिन फिर भी कभी भी अपने उनको जो है भगवान अपने को स्वीकार कर, एक भक्त की भूमिका निभाई, और भक्त के लिए क्या क्या जरूरत है, उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण किया। जो संन्यास की कोई जरूरत नहीं, फिर भी उनको समाज को शिक्षा देने के लिए जो चार वर्ण है, चार वर्णों के अनुसार जो है संन्यास, संन्यास एक वर्ण है, तो संन्यास उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया। तो सिद्धांत कुल मिलाकर के सिद्धांत ये है, हमें हमेशा जो हमारे प्रतिष्ठित आचार्य हैं, परंपरा से आए हुए आचार्य हैं, भक्त हैं, उनका यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। यदि एक ग्रस्त उनका सम्मान नहीं करता है, एक साधारण व्यक्ति का भी सम्मान नहीं करता है, तो समझना चाहिए उसके सारे पुण्य को अतिथि लेकर के चला जाता है और सारे पाप आपके पास छोड़कर के चला जाता है। तो इसलिए हमें बड़े ही तत्पर रहना चाहिए, जो है एक व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को यथा योग को, विशेष करके भक्तों को किस प्रकार सम्मान देना है, इसकी शिक्षा लेना चाहिए। और साथ साथ में हमें अपनी धर्म मर्यादा पर उस पर चलना चाहिए, इसी से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जिताई गौर श्री वृंदे।